ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए जल उत्सव अभियान पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग में भूजल संसाधन सलाहकार युगल किशोर जोशी और जल शक्ति मंत्रालय में पेयजल और स्वच्छता विभाग के निदेशक वाई के सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
एक आंकड़ा है कि भारत में विश्व की 18% जनसंख्या है, लेकिन जल संसाधनों में इसका हिस्सा केवल 4% है। इससे ये दुनिया के एक बहुत बड़े ऐसे देशों में गिना जा सकता है जहां पर जल प्रबंधन को वरीयता दी जाने की आवश्यकता है। और नीति आयोग की ही अगर हम रिपोर्ट का जिक्र करें तो इसमें ये कहा गया है कि बड़ी संख्या में भारत में जो जल की समस्या का सामना कर रहे क्षेत्र हैं, उनके लिए जरूरत है बहुत सी नीतियों की। और जलवायु परिवर्तन की वजह से और तमाम प्राकृतिक कारणों की वजह से बाढ़, सूखा और ऐसी तमाम जो स्थितियां पैदा होती हैं वो जल संकट को और ज्यादा गंभीर बनाती हैं। इस लिहाज से हमने देखा है कि बीते वर्षों में जल प्रबंधन को लेकर, जल संरक्षण को लेकर कई अहम परियोजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई हैं। इनमें जहां एक तरफ हम जल जीवन मिशन का जिक्र कर सकते हैं, जिसमें कि जल संरक्षण की दिशा में समुदाय की भागीदारी पर विशेष जोर है, और इसमें तमाम ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो इस कार्यक्रम को और ज्यादा व्यापक बनाते हैं। इसी तरह से आज हम जिस हवाले से कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं, नीति आयोग की ओर से शुरू की गई जल उत्सव की पहल है। ये 15 दिन तक चलने वाला एक जल संरक्षण और सतत जल प्रबंधन की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया गया है। और देश भर के 20 राज्यों और जो आकांक्षी जिले हैं, आकांक्षी ब्लॉक हैं, उनमें इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। तो आज हम कार्यक्रम में विस्तार से इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जल उत्सव जैसे अभियान और जल जीवन मिशन जैसे अभियान भारत में जल संरक्षण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे देश में जल संरक्षण और जल प्रबंधन को लेकर जो वर्तमान नीतियां हैं वो कैसे एक सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दे रही हैं और क्या कुछ अभी इसमें करना बाकी है। हमारे साथ दो विशेषज्ञ कार्यक्रम में शामिल हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे नीति आयोग से युगल जोशी जी का, और हमारे साथ जल शक्ति मंत्रालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में निदेशक वाई के सिंह जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का।
बहुत धन्यवाद कमल जी।
बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी।
जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में ही कहा कि जल उत्सव अभियान विभिन्न राज्यों में संचालित किया जा रहा है, आकांक्षी जिले और आकांक्षी ब्लॉक इसमें शामिल हैं, उनमें कई गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। तो अपने कुछ क्षेत्रों के संवाददाताओं से हम इस बारे में विस्तार से जानकारी भी लेंगे। तो सबसे पहले हम जल उत्सव अभियान से ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले युगल जी, आपसे ही मैं अगर पूछूं तो किस तरह से एक सतत जल संरक्षण और प्रबंधन की दिशा में ये अभियान महत्वपूर्ण है, क्या सोचकर इस अभियान को शुरू किया गया है?
धन्यवाद कमल जी। मैं आकाशवाणी का बहुत आभारी हूँ कि उसने जल उत्सव पर यह परिचर्चा आयोजित की है, और आज ही हमने जल उत्सव का जो पखवाड़ा है 15 दिन का, ये आरंभ किया है। पानी का सेलिब्रेशन क्यों, जल उत्सव क्यों
जी?
जल उत्सव इसलिए कि हमारे लोगों में पानी के बारे में, पानी की वैल्यू, पानी के इम्पोर्टेंस के बारे में जागरूकता आए। वो पानी का पूरा चक्र, पानी का जो चक्र होता है, और पानी के बारे में इम्पोर्टेंट चीज ये है कि लाखों लाख साल से जब पानी एक बार धरती पर बना तो फिर दोबारा बना नहीं। तो इसके प्रबंधन की जो आपने बात की, पानी की समस्या एज सच पानी की कमी की समस्या नहीं है, बल्कि पानी के प्रबंधन की समस्या है, वाटर मैनेजमेंट का एक इश्यू है। अब रही बात जल उत्सव की, क्यों हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वाटर को, तो विगत 5 सालों में जल जीवन मिशन ने जो बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं घर घर तक नल से जल पहुंचाने की, उसके साथ ही चुनौतियां भी आ गई हैं कि कैसे हम वाटर के सोर्सेस को, खासकर जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और कैसे उस पानी को जो हम घरों तक पहुंचा रहे हैं उसको दोबारा उपयोग करके उस जल चक्र में लाने का प्रयास करें। इसके लिए लोगों को जागरूक करना, तकनीकों का उपयोग करना, और घर घर तक यह पानी के बारे में चर्चा हो आवश्यक हो गया है। अब उत्सव का जहां तक संबंध है, हम उत्सव उस चीज के लिए मनाते हैं जो चीज हमारे जीवन से अपरिहार्य रूप से जुड़ी होती है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी परंपरा है उत्सवों की। हम सबसे बड़ा तो जल का उत्सव कुंभ का ही मनाते हैं। हम तो मानते हैं कि हमारी नदियों में समुद्र मंथन के वक्त जो अमृत की बूंदें गिर गई थी, उनसे यह जल गंगा नदी में प्रवाहित होता है और अमृत के समान है। हमारे यहाँ हम छोटे छोटे कुएं, बावड़ियां, तालाब सब पूजा के स्थल बना देते हैं, उन्हें अपवित्र नहीं करते हैं। अब कैसे यह कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, पिछले बार जो तृतीय चीफ सेक्रेटरीज का कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया था कि क्या नदी उत्सवों की परंपरा पर हम जल उत्सव नहीं आयोजित कर सकते
जी।
तो इसी को आगे बढ़ाते हुए यह जल उत्सव का कार्यक्रम है कि हम लोगों तक पानी के महत्व, उनकी उपयोगिता पर उनकी संवेदनशीलता बढ़ाएं, हर घर में पानी के बारे में चर्चा हो, नई टेक्नोलॉजीज का कैसे पानी के संरक्षण में, कैसे पानी के दोबारा यूज में इस्तेमाल कर सकें उस पर बात हो, ग्रामीणों के साथ, रूरल लोगों के साथ संवाद हो और खासकर छात्रों को इसमें जोड़ा जाए जो फील्ड टेस्ट किट और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से पानी की गुणवत्ता लोकल स्तर पर जांच सके।
जैसा कि वाईके सिंह जी अभी युगल जी ने बताया कि जो संवाद है लोगों के बीच जल संरक्षण को लेकर, वो स्थापित करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य इस जल उत्सव का भी है, और तमाम और पहलुओं के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से जो कम्युनिटी की भागीदारी से लेकर तकनीकी पक्षों तक इस अभियान में जोर दिया गया है। अगर हम इस अभियान के सिद्धांतों पर भी देखें तो जो इसमें 5 R शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, रिस्पेक्ट, रिड्यूस, रिसाइकल, रिजुविनेशन, और इस तरह के जो ये सिद्धांत हैं जिसमें कि समुदाय की भागीदारी पर हम जोर दे रहे हैं, और जो जल शक्ति मंत्रालय की भी तमाम योजनाएं हैं जिसमें जल जीवन मिशन जैसे अभियान में भी हम देखते हैं कि पानी समिति का कॉन्सेप्ट है गांव के स्तर पर, कि गांव के लोग खुद ही अपनी समिति बनाकर ये निर्धारित करें कि गांव में पानी को संरक्षित कैसे करना है और पूरा मैनेजमेंट, पूरा प्रबंधन पानी का इस मिशन के तहत कैसे करना है, और कैच द रेन और तमाम ऐसे अभियानों में भी हमने देखा कि समुदाय की भागीदारी पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। तो सरकार समुदाय की भागीदारी से किस तरह से जल प्रबंधन को जमीनी स्तर पर ले जाने का काम कर रही है, और इसके नतीजे आपको क्या दिख रहे हैं, और आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि जल उत्सव, जल जीवन मिशन जैसे अभियानों में जब हम समुदाय की हिस्सेदारी देखते हैं तो उससे हम कितना बड़ा एक जल संरक्षण, जल प्रबंधन की दिशा में मकसद हासिल कर सकते हैं?
मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको जल जीवन मिशन के बारे में बताना चाहूंगा। इसमें ये रूरल एरिया में, देहात, भारत के देहात क्षेत्र में हर घर को टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाना है 55 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो अगर हम एक एवरेज परिवार की अवधारणा देखें देहात क्षेत्र में, तो लगभग 5 लोग आते हैं तो लगभग 250 लीटर से ज्यादा हर घर में पानी पहुंचेगा। तो इसमें अगर आप देखें अभी तक जो स्थिति है हमारी, 19.34 करोड़ घर थे जब मिशन की शुरुआत हुई थी, एंड मिशन की शुरुआत के समय में 3.23 करोड़ घरों में ही पेयजल थे, और आज ये स्थिति है कि 15 करोड़ से ज्यादा, लगभग 78.8% घरों में, ग्रामीण घरों में पेयजल को पहुंचाया जा चुका है। और इसका बहुत ही सुंदर परिणाम है। आप जानते हैं कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे लोगों को पानी दूर दूर से लाना पड़ता था, और ये कार्य अधिकतर महिलाएं और बच्चियां करती थी। तो इसलिए ये महिलाओं और बच्चियों के जीवन पे काफी अच्छा प्रभाव डाल रहा है, और उनका समय बच रहा है जिससे वो अपने घरों में अधिक समय दे पा रही हैं, बच्चों को स्कूल के लिए समय मिल रहा है, ये सारे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। अब हम अगर जल उत्सव को देखते हैं और जल जीवन मिशन को देखते हैं तो इसमें बहुत ही ज्यादा जुड़ाव है। जल उत्सव एक तरह से जल जीवन मिशन के लिए रामबाण की तरह है
जी।
क्योंकि जल जीवन मिशन में आप देखेंगे कि वाटर सप्लाई के एसेट्स गांव गांव में क्रिएट किए जा रहे हैं, 5 वाटर सिंगल विलेज स्कीम्स हैं, कुछ गांवों को मल्टी विलेज स्कीम से कवर किया जा रहा है, लेकिन जो भी एसेट्स बन रहा है उस एसेट में पानी के सोर्स से पानी लगातार आता रहे, तब वो जो है एक सस्टेनेबल तरीके से लोगों को घर तक पानी पहुंचाता रहे। और इस सस्टेनेबिलिटी में सोर्स सस्टेनेबिलिटी का बहुत ज्यादा महत्व है, मतलब जो स्रोत है जहां से पानी आता है, अगर स्रोत बना रहेगा तो जो हमारी स्कीम्स हैं वो प्रॉपर जो है फंक्शन करके और पानी लाभार्थियों तक पहुंचाती रहेंगे। जल उत्सव के माध्यम से जो लोगों की जन भागीदारी किया जा रहा है स्रोतों के संवर्धन, स्रोतों के उन्नयन के लिए, ये बहुत ही सराहनीय है। और जल जीवन मिशन में जैसा कि आप बोल रहे थे कि 5 लाख से अधिक जो है विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटियों का गठन हो चुका है, लगभग 6 लाख से ज्यादा विलेजेस है। ये विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी जो है पानी और स्वच्छता दोनों से जुड़े हुए पहलुओं को गांव में देखती है, और विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी में ही जो वुमेन मेंबर्स हैं उनको प्रिफरेबली जो है फील्ड टेस्टिंग किट के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, जिससे कि वो फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से अपने घर पे या गांव में आने वाले पानी की सप्लाई की गुणवत्ता की जांच कर सके। पानी की गुणवत्ता का जो है बहुत महत्व है। जल उत्सव में आप देखेंगे कि इसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है, बच्चों का पार्टिसिपेशन है, एंड जल के जो भी स्रोत हैं या जल के जो भी एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं उस पे एक जलबंधन प्रक्रिया का बेसिकली शुभारंभ है, जिससे वो एक तरह से उसको ट्रिब्यूट है कि इसको आप रेस्पेक्ट करें, इस एसेट को इसको मेंटेन करें, इसको बनाए रखें, सो दैट आपका और आपके बच्चों का भविष्य जो है सुरक्षित रहे। तो ये सारे जो प्रयास हैं और जो जल उत्सव है, इसके माध्यम से हमारे जल जीवन मिशन को काफी मजबूती मिलेगी।
हम राजस्थान चलते हैं क्योंकि जल संरक्षण और जल की समस्या दोनों ही बातों को लेकर राजस्थान की खूब चर्चा रही है। राजस्थान में किस तरह से जल उत्सव को लेकर गतिविधियां संचालित की जा रही हैं? हमारे संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। जितेंद्र जी, आप हमारे श्रोताओं को जानकारी दें कि राजस्थान में कौन से वो आकांक्षी जिले हैं जिनमें जल उत्सव अभियान चलाया जा रहा है और क्या कुछ गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
देखिए, जल उत्सव है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के जो आकांक्षी ब्लॉक है वहीं पर चलाया जा रहा है और कल से शुरुआत हो गई थी। 20 तारीख तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे। पूरी एक सूची बनाई गई है और प्रयास ये किया गया है कि समुदाय की अधिकतम भागीदारी को सुनिश्चित किए। साथ ही विभिन्न विभाग हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, जिनमें प्रमुख रूप से महिला और बाल विकास विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है, पंचायती राज विभाग है, इन सभी विभागों को समन्वित प्रयासों से एक जन जागरूकता विकसित की जाए, अधिकतम लोगों की इसमें सहभागिता सुनिश्चित की जाए, इस प्रकार के प्रयास किए गए हैं। जिस प्रकार आज गांव-गांव में एक जनसभा आयोजित की गई है, कल भी एक शिक्षकों की दौड़ होगी, वाटर कंजर्वेशन में या हम कहें कि जल संरक्षण में शिक्षकों की क्या भूमिका हो सकती है, जल संरक्षण में विद्यार्थियों की क्या भूमिका हो सकती है, जल संरक्षण में PRI मेंबर्स की क्या भूमिका हो सकती है, इस प्रकार प्रतिदिन एक एक गतिविधि प्लान की गई है और उसके लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे 20 तारीख तक। इसमें पूरा प्रशासन जुटा हुआ है, आम नागरिक जुटे हुए हैं, जनप्रतिनिधि है वो जुटे हुए हैं, आंगनबाड़ी और जो हेल्थ वर्कर्स है उनको भी इसमें सहयोजित किया गया है।
जी धन्यवाद जितेंद्र जी। हम चर्चा में वापस आते हैं। युगल जी, हम जितने भी इन जल संरक्षण की दिशा में सरकार के अभियानों की बात करें तो हमने देखा है कि बीते वर्षों में सिर्फ जल संरक्षण और जल प्रबंधन तक ही ये बात या ये सिद्धांत सीमित नहीं है। ध्यान इस ओर भी केंद्रित किया गया है कि एक गुणवत्तापूर्ण साफ सुथरा जल लोगों तक पहुंचे जो पीने लायक हो। इससे क्योंकि जो साफ सुथरे जल और गुणवत्तापूर्ण की जब समस्या पूरी होती है तो इससे पूरी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था और स्वास्थ्य का पूरा ढांचा इससे प्रभावित होता है। तो इस दिशा में आप इस तरह के अभियानों की अहमियत को कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने देखा जल उत्सव अभियान में जहां एक तरफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में विद्यार्थियों की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है, वहीं स्वयं सहायता समूहों, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इसमें जोड़ा गया है। तो कैसे ये पूरा अभियान एक बहुत बड़े तंत्र को प्रभावित कर रहा है? क्योंकि हम जितने भी राज्य देखें जिन्होंने भी जल जीवन मिशन के तहत एक तरह से 100% पाइप्ड वाटर घरों में पहुंचते हुए जिन राज्यों ने देखा है, जिन राज्यों ने इस लक्ष्य को पूरा किया है, तो वहां सर्वेक्षणों में यह भी पाया गया है कि वहां की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य की स्थिति भी बेहतर हुई है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे संस्थाओं ने भी इस मामले में बड़े आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि किस तरह से अगर साफ सुथरा पानी और एक गुणवत्तापूर्ण पानी लोगों तक पहुंचता है तो लोगों की स्थिति किस तरह से सुधरती है।
स्वच्छ भारत मिशन के समय में यूनिसेफ की एक स्टडी आई थी जिसमें बताया गया था कि अगर हर घर में टॉयलेट है और घर के सदस्य टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं तो प्रति परिवार एक साल में करीब 50,000 रुपए की इनडायरेक्ट बचत हो जाती है जो वो दवाइयों वगैरह पे खर्च करते। इसी तरह से जल जीवन मिशन पे पहुंचने पर विभिन्न तरह की, जैसे आपने WHO का जिक्र किया, इसी तरह से IIM बेंगलोर की है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की रिपोर्ट है कि कई लाख असमय मौतें जो नवजात शिशु या शिशुओं की होती वो जल जीवन मिशन के माध्यम से साफ पानी पहुंचाने से रोकी जा सकती हैं। इसी तरह से बीमारियों की आपने बात करी, स्टंटिंग की बात होती है, बच्चों की लंबाई बढ़ना कम हो जाता है, ये सारे अगर पानी साफ न हो तो ये हम लोगों का रोजमर्रा का ही अनुभव है। आपने एक बात पर और गौर किया होगा कि हम लोग अधिकांशतः पानी की गुणवत्ता के बारे में थोड़ा शंकित रहते हैं, इसीलिए लगभग शहरों में तो हर घर में RO या किसी न किसी तरह का उपकरण हम लगाते हैं तो हमें विश्वास होता है कि हाँ पानी हमें सही मिल रहा है। लेकिन जल जीवन मिशन की ये मुहिम है कि फील्ड टेस्ट किट्स के माध्यम से, ये बहुत सिंपल सी होती हैं, कम से कम एक गांव में 5 महिलाएं, और अब ये जल उत्सव के माध्यम से प्रयास यह है कि हर छात्र जो बड़ी कक्षाओं के छात्र हैं वो प्रशिक्षित किए जाएं कि वो अपने गांव में मिल रही टैप वाटर सप्लाई का जो पानी है उसकी गुणवत्ता जांच सके। तो ये एक तरह से जो डिसेंट्रलाइजेशन का है, पहले तो नॉर्मली जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारे पास 22 या 2300 जो लैब हैं वो रहती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल या ब्लॉक लेवल पे, लेकिन अगर आप पानी की गुणवत्ता जांचने का जो अधिकार है, जिम्मा है, वो गांव की ही महिलाओं, गांव के ही छात्रों को दे देते हैं, तो इससे उनमें जो आत्मविश्वास आएगा पानी की गुणवत्ता के प्रति वो बड़ा ही महत्वपूर्ण और अप्रतिम होगा। मुझे नहीं लगता दुनिया के और देशों में या कहीं भी इस तरह का अभिनव प्रयोग किया गया है। गांव-गांव का आदमी जागरूक हो कि स्रोत की सुरक्षा, स्रोत की सफाई, मिलने वाले पानी का किस तरह से बेहतर यूज करे, इफेक्टिव यूज करे, एफिशिएंट यूज करे, और जो पानी घरों से फिर निकल रहा है उसका दोबारा उसी सफाई, साफ सफाई करके, उसका शोधन करके हम कैसे इस सिस्टम में वाटर लूप में वापस लाएं। यही जल उत्सव की मूल अवधारणा है कि यह बात हर आदमी के संज्ञान तक लाई जा सके।
हम मध्य प्रदेश यहाँ चलना चाहेंगे, हमारे संवाददाता संजीव शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, मध्य प्रदेश से भी हम आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे कि जल उत्सव कार्यक्रम को वहाँ किस तरह से संचालित किया जा रहा है, और जल उत्सव और जल जीवन मिशन जैसे जो कार्यक्रम हैं, अभियान हैं, वहाँ पर मध्य प्रदेश में अभी आपके पास अगर जानकारी हो तो ये भी बताएं कि क्या नतीजे रहे हैं और किस तरह से समुदाय की भागीदारी को साथ लेकर इन अभियानों को संचालित किया जा रहा है।
कमल जी, जहाँ तक जल उत्सव की बात है तो मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला है, निमाड़ क्षेत्र में आता है खरगोन जिला। इसके झिरन्या ब्लॉक को आकांक्षी ब्लॉक घोषित किया गया है और इसी ब्लॉक में जल उत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। जहाँ तक जो हम लोग बात कर रहे थे जल जीवन मिशन, जल संवर्धन अभियान या नल से जल जैसी जो तमाम सरकार की योजनाएं हैं जिनके जरिए जल पहुंचाया जा रहा है, और हमारे जो विशेषज्ञ भी बता भी रहे थे कि जल प्रबंधन सबसे जरूरी बात है, तो खरगोन जिला इन मामलों में वाकई उदाहरण की तरह है कि जिस जिले से नर्मदा नदी, कुंदा नदी और वेदा नाम की एक नदी, इस तरह से नदियां जहां से गुजरती हूँ, नर्मदा नदी तो करीब 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में वहां रहती है, इसके बाद भी अगर उस जिले में कभी पानी की कमी रही है तो इसका कारण है जल का कुप्रबंधन, मतलब ढंग से प्रबंधन नहीं किया गया, इस वजह से वहां पानी की समस्या खड़ी हुई। इसलिए सरकार ने झिरन्या ब्लॉक को खासतौर पर चुना है क्योंकि यहां के 38 गांवों में आमतौर पर गर्मी के दिनों में पानी का इतना ज्यादा संकट खड़ा हो जाता है कि प्रशासन को निजी बोरिंग या जो जल स्रोत है उनका अधिग्रहण तक करना पड़ता है ताकि आम लोगों को पानी पहुंचा जा सके, और आम लोगों को भी गाड़ियों से, साइकिल से, अलग अलग साधनों से पानी जुटाना पड़ता है। तो सरकार की तमाम योजनाओं और प्रयासों का नतीजा ये निकला है कि खरगोन नगर पालिका जो है वो वहाँ नल से जल न केवल पहुंचने लगा है बल्कि 28,000 से ज्यादा परिवारों तक नियमित पानी पहुंच रहा है। शहर की समस्या दूर होने के बाद सरकार ने जल उत्सव या इस तरह के अभियानों के जरिए अब गाँव पे फोकस किया है। एक और जो अहम जानकारी है कि इन अभियानों से या इस जागरूकता का फायदा ये मिल रहा है कि खरगोन जिले के एक और ब्लॉक है भीकन गांव, यहाँ बकायदा उन्होंने तंजानिया की तर्ज पे बंजर भूमि में जल संरक्षण के लिए अभियान चलाया, उसको नाम दिया था जस्ट डिग इट फाउंडेशन के सहयोग से। यहाँ उन्होंने पहले जमीन में अर्धचंद्राकार गड्ढे खोदे, उनमें घास के बीज डाल दिए ताकि जब बरसात का पानी आए तो वो गड्ढे भर जाएं और बीज अंकुरित हो जाएं, उसके बाद फिर वो घास आगे पानी रोकने का काम करेगी और वर्षा जल संरक्षण की एक गतिविधि बढ़ेगी। तो कुल मिला के आप कहें तो खरगोन जिला मध्य प्रदेश के बाकी जिलों के लिए या देश के दूसरे जिलों के लिए अपनी पहल से एक आदर्श जिला बन रहा है। नगर पालिका के जरिए पानी तो घर में पहुंचने लगा है, जल्दी ही चाहे झिरन्या ब्लॉक जैसे जो जल संकट से जूझ रहे इलाके हैं वहां भी पानी सुलभ हो जाएगा और लोगों को शुद्ध पीने का पानी भी मिलेगा और वहां के जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जल के स्रोत हैं, उनमें भी भरपूर पानी उपलब्ध होगा। जी
असोनो हमारे साथ जुड़ी है नागालैंड कोहिमा से, आप बताएं नागालैंड में कौन से ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं जो कवर किए गए हैं जल उत्सव में, और खासतौर पर एक्टिविटीज के बारे में भी हमारे श्रोताओं को आप जानकारी दें।
नागालैंड में किफिरी जिले से जल उत्सव मना रहे हैं। ये किफिरी डिस्ट्रिक्ट एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। कम से कम 7 नदियों के घिरे होने के बावजूद विशेष रूप से शहर के किफिरी जिले के निवासियों को पानी की कमी का सामना करना पड़ती है। पानी के इस कमी के कारण पानी का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग नहीं हो रहे है। 2 सप्ताह तक चलने वाला उत्सव के दौरान पीएचईडी नागालैंड, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, रूरल डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट मिलकर तरह तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसमें सेमिनार्स, कैपेसिटी बिल्डिंग्स, क्लीननेस ड्राइव और प्लांटेशन ड्राइव, ये सब होगा। इसके साथ वाटर टेस्टिंग की ट्रेनिंग टू सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टूडेंट्स, ये सब करने वाले है। और एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ कि यहाँ पर नागालैंड में हम लोग ट्रेडिशनल वेल का यूज करते हैं। तो ये सब ट्रेडिशनल वेल, तरह तरह का ट्रेडिशनल वेल विलेजेस में होता है, तो वो सब साफ सफाई का करने वाले हैं। तो ये सब एक हाईलाइट है किफिरी डिस्ट्रिक्ट का एक्टिविटीज।
युगल जी, आपके पास वापस आना चाहूंगा। हम भारत जैसे देश में जब शहरों और गांवों में एक तरह से जो जल प्रबंधन के अंतर की बात करते हैं कि शहरों में हमारे पास, बड़े शहरों में खासतौर पर, पूरा एक ढांचा है, पूरी व्यवस्था है, लेकिन भारत में भौगोलिक विविधता इतनी ज्यादा है और कई तरह की और विविधता और असमानता है, तो उस वजह से हम ये देखते हैं कि दूर दराज के इलाकों, गांवों और पहाड़ी क्षेत्रों में एक अलग तरह से योजना को संचालित करने की आवश्यकता थी, जिससे कि अगर पानी की उपलब्धता हमें गांवों, पहाड़ों और दूर दराज के क्षेत्रों तक करनी है तो उसमें एक स्थानीय जरूरत के हिसाब से योजना को बनाना था। ऐसे में हमने देखा जल जीवन मिशन जैसी परियोजनाओं से ये संभव हुआ कि हम स्थानीय स्तर पर परियोजनाओं को किस तरह से बनाएं। तो जो नीति आयोग भी वाटर न्यूट्रलिटी की जब बात करता है, तो ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि हमें आने वाले समय में कुछ ऐसे सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे जिस भौगोलिक विविधता की वजह से हम एक बहुत बड़े पानी के प्रबंधन के अंतर को देखते थे देश में, वो दूर हो सकेगा?
ये जब सरकार का पिछला टेन्योर शुरू हुआ था 2019 में, तो सबसे एक बड़ा परिवर्तन सरकार यह लाई थी कि इसने दो मंत्रालयों, जो कि एक पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय था और दूसरा जो वाटर रिसोर्सेस मिनिस्ट्री थी, इन दोनों को ये एक छत के नीचे लाई और एक नए मंत्रालय का गठन किया गया, जल शक्ति मंत्रालय। क्योंकि पानी जो है, चाहे वो एग्रीकल्चर वाटर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल वाटर हो, चाहे वो डोमेस्टिक वाटर हो, हम लोग उसे अलग अलग खानों में डाल करके नहीं दे सकते, अलग अलग समस्याओं या अलग अलग समाधानों की तरह नहीं देख सकते। तो सबसे बड़ी जो मैं बात समझूंगा भारत में हुई है जल प्रबंधन के मामले में, वो हुई है एक जल शक्ति मंत्रालय का गठन 2019 में। अब रही बात के शहरों और गांवों के जल प्रबंधन में क्या विसंगतियां हैं, क्या असमानताएं हैं, तो यहाँ पर फिर से मैं पेयजल और स्वच्छता विभाग की बात करना चाहूंगा। उस विभाग के अंतर्गत दो बहुत बड़े फ्लैगशिप प्रोग्राम भारत सरकार के चलते हैं, एक है स्वच्छ भारत मिशन का जो फेज 2 चल रहा है और दूसरा जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन में जो पानी घरों में दिया जाता है, वो पानी जब बाहर आता है, जिसे हम ग्रे वाटर कहते हैं, उस पानी का सही निष्पादन कैसे हो, यह स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के अंतर्गत सुनिश्चित किया जाता है। चाहे वो स्मॉल लेवल पे सोक पिट्स के माध्यम से हो, कम्युनिटी सोक पिट्स के माध्यम से हो, या बड़े शहरों में जो पानी जो जा रहा है उसको हम STPs में, जो सुएज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, उनमें हम उनका शोधन करते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है स्वच्छ भारत मिशन का और जल जीवन मिशन का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मामले में। अब रही, जैसे मैंने जिक्र किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो पानी पर आधारित विभिन्न अभियान, विभिन्न कैंपेन और विभिन्न योजनाएं हैं, चाहे वो भूमि जल के स्तर के सुधार के लिए चलाया गया अटल भूजल योजना हो या अमृत सरोवर हो, हमारे यहाँ कृषि में या इंडस्ट्रीज में जो एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज है उसे बढ़ाए जाने की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है और हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह भारत में जो भारत का नेशनल वाटर प्लान है उसमें हम वाटर यूज एफिशिएंसी किस तरह से बढ़ा सकें। नदियों की साफ सफाई, नदियों के पानी का स्वच्छ रखने के लिए हमारे पास जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, इसका और विस्तार भी हो रहा है और सफल भी हो रहा है। आपको अगर याद हो तो पिछली बार जो प्रयागराज में अर्धकुंभ हुआ था, उसकी सफाई व्यवस्था पेयजल और स्वच्छता विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, सबने जब मिलजुल कर करी थी, तो वह एक तरह का बड़ा ही अविस्मरणीय और बहुत साफ सुथरा कुंभ बना था। इसी तरह से ये सारे मिशन जब एक साथ, और इसमें मैं जल शक्ति अभियान की भी चर्चा करूंगा, जहां घर घर में, गांव गांव में, खासकर 256 जो सबसे अधिक वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट थे भारत के, वहां किस तरह से जल संचयन को बढ़ाया दिया जाए, किस तरह से लोगों में इसके बारे में जागरूकता पैदा की जाए, का एक विशाल महती प्रोग्राम चलाया गया, जो उसके बाद कैच द रेन और फॉर्मों में विकसित हुआ। ये सारी की सारी चीजें इस बात की ओर इंगित करती हैं कि अब न सिर्फ सरकार बल्कि जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर और लोगों के सामुदायिक स्तर पर भी पानी को अलग अलग खानों में बांटकर देखने की बात अब पुरानी बात होती जा रही है। अब हम उसे होलिस्टिक रूप से एक वाटर प्रबंधन के रूप में ले रहे हैं और ये बहुत बड़ी चीज है। विश्वास है कि जब ये बात आगे आएगी तो अगले 5-10 सालों में, अभी हम लोग कई जगह पर देख रहे हैं कि बहुत तरह के पैरामीटर्स में इन सब में बहुत तरक्की हुई है और ये और भी आगे होगा। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि आने वाले दिनों में जो जलवायु परिवर्तन है, जिस तरह से अभी रन ऑफ हो रहा है पानी का पहले बरसा चातुर्मास 4 महीने होती थी, अब 8 या 9 दिन में ही ज्यादातर पानी बारिश वाला बह जाता है। तो अगर हम वाटर बॉडीज का रिजुवनेशन करते हैं और अमृत सरोवर देश भर में बढ़ाते हैं, 65,000 की बजाय हम प्लान करते हैं कि हर गांव में एक एक इस तरह का अमृत सरोवर हो, तो हम इस दिशा में बहुत अधिक प्रयास कर पाएंगे कि हमारे यहाँ पानी की जो समस्या, जब जल जीवन मिशन के माध्यम से 20 करोड़ घरों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति की तरह से जाएगा, तो उसके लिए जो हमें पानी आवश्यक है वो हमारे इन सभी वाटर कंजर्वेशन मेथड से मिले और इसके अलावा वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट है उससे मिले।
अंत में वाई के सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जल प्रबंधन और जल संरक्षण में अब सरकार का ये भी फोकस है कि तकनीक का इस्तेमाल इसमें ज्यादा से ज्यादा हो। हम स्थानीय स्तर पर पानी की गुणवत्ता की जांच और रेट्रोफिटिंग की तो बात कर ही रहे हैं, उसके अलावा बड़े स्तर पर हम देखें तो अब जियो टैगिंग जैसी जो तकनीक है उसके माध्यम से भी ऐसे स्थानों को चिन्हित करने की ओर ध्यान है जो जहां पर जल की समस्या है और उनके प्रति संपर्क कैसे निकाला जाए उसको लेकर भी योजनाएं उस पर किस तरह से बनाई जाए। तो ऐसे में जो तकनीक है वो कैसे इन योजनाओं को और ज्यादा एक सहारा दे रही है जिससे कि हम जो नतीजे हैं उसके हिसाब से योजनाओं को और ज्यादा इसमें व्यवहारिक बना सकें।
आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश के खरगोन ग्रामीण का डेटा आपके सामने लाना चाहूंगा।
जी,
अगर हम मध्य प्रदेश के खरगोन ग्रामीण की वस्तु स्थिति देखें तो जब ये जल जीवन मिशन 2019 में शुरू हुआ था तो उस समय सिर्फ 46,600 हाउस होल्ड्स में ही, मतलब घरों में ही पेयजल उपलब्ध था, लगभग 13%, और जो टोटल घर हैं खरगोन में वो लगभग 3.53 लाख। और आज की अगर हम स्थिति देखें तो खरगोन ग्रामीण में, रूरल एरिया में, लगभग 78% घरों में पेयजल पहुंच चुका है, शुद्ध पेयजल, जो कि लगभग 2.76 लाख हाउस होल्ड्स होते हैं। अगर गाँव को देखें हम तो लगभग 1140 गाँव थे जिसमें से हर घर जल रिपोर्टेड गांव 554 हो चुके हैं और उसमें ग्राम पंचायतों ने लगभग 186 गांवों को सर्टिफाई भी कर दिया। तो ये ग्रामीण खरगोन की वस्तु स्थिति है पेयजल के उसमें। अब जो आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि टेक्नोलॉजी का उपयोग और जियो टैगिंग का उपयोग कैसे किया जा रहा है जल जीवन मिशन और जल के संरक्षण में, तो इसमें आप देखेंगे कि जल जीवन मिशन में हम लोगों ने एक मुहिम चला रखी है कि हर पाइप वाटर सप्लाई स्कीम के जितने भी सोर्स हैं उसकी आप जियो टैगिंग करेंगे, जिससे ये होगा कि सोर्स का ग्राउंड पे लोकेशन क्लियर है। और ये भी हमने ये मुहिम चला रखी है, जैसा कि थर्ड चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस में भी ये मार्गदर्शन मिला था कि पेयजल के हर स्रोत का एटलीस्ट एक रिचार्ज स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वो जल शक्ति अभियान के माध्यम से इस पे बहुत प्रभावशाली तरीके से राज्यों के साथ मिलके इस पे काम किया जा रहा है। तो जियो टैगिंग सोर्सेस का, पाइप वाटर सप्लाई स्कीम्स का, और प्लस पीएम गति शक्ति पे जो वाटर सप्लाई नेटवर्क है उसके लाने का काम भी बहुत जोरों पे चल रहा है। दूसरा, हमारा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और स्टेट्स मिलके बहुत सारी जगह जो रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं उसमें साइंटिफिक वे से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से एरिया हैं जहां रिचार्ज की संभावनाएं बहुत ज्यादा है।
कार्यक्रम का अंत मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के उन आंकड़ों के साथ ही करूंगा जिनका हमने चर्चा में जिक्र किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि अगर जल जीवन मिशन के लक्ष्यों की हम पूर्ति करते हैं तो हर दिन हम 5.5 करोड़ घंटे बचा सकते हैं, जो विशेषकर महिलाओं को पानी लाने में पहले लगते थे। एक आंकड़ा ये भी है कि सभी घरों में सुरक्षित पेयजल अगर उपलब्ध होता है तो इससे हम 4 लाख स्वास्थ्य से होने वाली मृत्यु को रोक सकते हैं। तो अगर ऐसे सकारात्मक जो अनुमान हम अगर कल्पना करें उनकी, तो ये संभव है कि अगर हमारे ये मिशन सफलतापूर्वक पूरे होते हैं तो इससे हम एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक और स्वास्थ्य के तंत्र में सकारात्मक नतीजे देख सकते हैं। और जिस तरह से हमने जल जीवन मिशन जैसे अभियानों की प्रगति में देखा है कि लगभग 80% तक गांव घर इसमें कवर किए जा चुके हैं और लगभग 2.5 लाख के करीब गांवों में नल के जरिए जल लोगों तक पहुंच रहा है, तो ऐसे आंकड़े एक सकारात्मक हमारे सामने परिणाम छोड़कर जाते हैं कि आने वाले समय में हम भारत में जल प्रबंधन का एक बहुत अच्छा मॉडल देख सकते हैं जिससे हमारी पूरी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था प्रभावित होगी और जो हमारे सतत विकास के लक्ष्य हैं उसकी पूर्ति में भी ये एक बहुत बड़ा योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों विशेषज्ञों का आप कार्यक्रम में जुड़े और जल उत्सव और जल जीवन मिशन जैसे विभिन्न अभियानों पर आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी और इस चर्चा में हिस्सा लिया।
बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद कमल जी।
अभी आप सुन रहे थे जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए जल उत्सव अभियान पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग में भू जल संसाधन सलाहकार युगल किशोर जोशी और जल शक्ति मंत्रालय में पेयजल और स्वच्छता विभाग के निदेशक वाई के सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।